नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम् अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। अनुशासन की बात है, संसार में अनुशासन का कितना महत्व है इसको हम अपने पुराण ग्रंथों से सीखते हैं। चाहे वो पुरानी बात हो चाहे नई बात हो, चाहे वह पुराना युग हो या नया युग हो, कोई भी युग हो, अनुशासन अपनी मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी शरण में या जिसके आधार लेने से संसारी प्राणी पतित से पावन बन जाता है और जिसकी शरण के अभाव में ये संसारी प्राणी बहुत कुछ ऊंचाई तक पहुंच करके भी पतन के गर्त में पुनः लुढ़क जाता है, गिर जाता है, जिसकी गवेषणा करने के लिए हम कोई भी सक्षम नहीं, केवल ज्ञानी के द्वारा ही वह ज्ञात हो सकता है कि उतनी ऊंचाई तक पहुंच करके बेजीव का पतन यदि हो सकता है तो कहां पर कौन ढूंढ सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि वह केवल सर्वज्ञ का विषय बनता है, भगवान के अलावा हम तुम व्यक्तियों की वह वश की बात नहीं रहती है। उस अनुशासन की बात आपके सामने करना चाह रहा हूं। महाभारत से सब लोग परिचित हैं क्योंकि भारत में बैठे हैं। आज वर्तमान में नव भारत भी आप पढ़ते हैं, प्रतिदिन आपके सामने आता है। न नव भारत की बात है न महाभारत की बात है, बात तो भारत की, किंतु महाभारत कैसा बनता है और नव भारत कैसा बनता है, भारत किसे कहते हैं, इससे याद होता है। जब महाभारत प्रारंभ हो जाता है, युद्ध के कुछ नियम होते हैं, अनुशासन होता है। युद्ध का अर्थ ऊर्ध्वम नहीं, युद्ध का अर्थ अनुशासनबद्ध एक विद्या है जिसके माध्यम से जो अनुशासन में नहीं रहता उसके लिए शासन का दर्शन या सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो अनुशासनबद्ध होकर के ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। एक दिन की बात है कि आज अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना करेगा और यह जब घोषणा हो गई तो दोनों तरफ से उस रचना के लिए कुछ समर्थन और कुछ विरोध प्रारंभ होंगे, संघर्ष प्रारंभ हुआ। नियमावली बनी थी और प्रतिदिन की नियमावली बनती ही थी। अभिमन्यु आप जानते हैं अर्जुन का सुपुत्र माना जाता है। वह बेटा बाप से कम नहीं था, बाप से कम नहीं होते हुए भी कुछ कमियां रह नजर में आती हैं, उसका कारण आप लोगों को ज्ञात है। चक्रव्यूह की रचना में वह प्रवेश करता चला जाता है। आज का यह दिन महाभारत के लिए एक शिक्षा प्रद माना जाता है। किस प्रकार धांधला होता है और किस प्रकार घोटाला हुआ करते हैं, यह आज ही नहीं पहले भी हुआ करता था, वह नजर आता है। धर्म से यदि कोई चलता है तो उसमें यश तो निश्चित है, लेकिन अधर्म से चलता है तो सत्य का नाम समाप्त हो जाता है और असत्य एक प्रकार से हावी हो जाता है। युद्ध को इसलिए अपनाया जाता है कि कहीं असत्य हावी न हो जाए जनता के ऊपर और सत्य कहीं चला न जाए, क्योंकि सत्य यदि चला जाता है तो असत्य राज्य कर नहीं सकता, क्योंकि असत्य का राज्य असत्य के ऊपर संभव नहीं और असत्य का राज्य सत्य के ऊपर भी संभव नहीं। सत्य का राज्य असत्य के ऊपर तो संभव हो सकता है। केवल भारत में श्रमण परंपरा ही रही ऐसा नहीं है, गृहस्थ परंपरा भी है। जो गृहस्थ क्रियाकांड के माध्यम से अपने जीवन को एक प्रकार से श्रमण परंपरा की पुष्टि के लिए आगे बढ़ाने के लिए कारण हो जाते हैं, तो जो भी प्रवेश पाता चला जाता है वीर अभिमन्यु, वो अभिमन्यु कहलाता था, लेकिन उसके पीछे वीर और उपाधि लगाई जाती थी। छोटा सा बालक है, आप लोगों के नाती जैसे है, लेकिन चूंकि क्षत्रियता उसके पास विद्यमान है, वह उस भीड़ को नहीं देखता, वह उन वीरों से डरता नहीं, वह और किसी से मतलब नहीं रखता। चक्रव्यूह की रचना जो है उसके अनुशासन से वह बंद करके चल रहा है और उसको आत्मविश्वास है कि मैं इसमें विजयी होकर के रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है और जिस लकीर से चलने के लिए कहा गया वह सही लकीर को पकड़ करके चलता है, वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता। किंतु लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग लकीर के जो फकीर हो जाते हैं वह उसके मायने को नहीं समझते। तोता रटंत को या लकीर के फकीर को हो, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। शब्द के साथ यह शब्द लकीर माना जाता है और उसमें जो अर्थ रहता है वह एक प्रकार से मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है। शब्दों के द्वारा यदि मंजिल मिल जाती है तो जिसके पास कान है मन नहीं है उसके भी मंजिल मिलने चाहिए, लेकिन मिलती नहीं मंजिल। सुनना कानों के द्वारा नहीं होता, सुनने में आता ही है कानों के द्वारा, किंतु मनोयोग के साथ सुनना होता है। मन लगाएंगे तो सुनना सार्थक होता है, कान लगाने से सार्थकता नहीं होती। कानों में के शब्द आकर के चले जाते हैं, कानों में अर्थ नहीं गूंजते, कानों में शब्द गूंजते हैं, मन में अर्थ आ जाता है जो व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है। उस शास्त्र विद्या के माध्यम से उसने इतने प्रावीण्य को प्राप्त कर लिया था, इतना आत्मविश्वास उसे था और वह प्रवेश पाता चला जाता है, सब लोग देखते दंग रह जाते हैं। सारे के सारे कौरव दांतों तले उंगली दबाते रह जाते हैं कि ये कैसा वीर अभिमन्यु है, पिता तो पीछे रह गया और यह तो उससे भी आगे बढ़ गया। ये निश्चित है कि इसी के द्वारा हमारा सारा सारा चौपट हो जाएगा, लेकिन अनुशासन पहले बंधा हुआ था, इसका कैसा उल्लंघन हो सकता। उल्लंघन का अर्थ महान पाप माना जाता, कोई कुछ भी नहीं कर, कोई चारा नहीं रहा। कौरवों ने सोचा कि हमारे आज तो फजीती हो जाएगी, यही इसको नहीं मिटाया जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार अभिमन्यु का वध हुआ है। यह वह वध नहीं है, वह एक प्रकार से क्षत्रियता के ऊपर एक कलंक है। आज तक बड़े बड़े जीवन में योद्धा और एक आज का छोटा लड़का और उसके सामने उसका यदि वध कर देते हैं तो उसकी शोभा नहीं मानी जाती। लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात जब आ जाती है, वह व्यक्ति इधर उधर नहीं देखता कि अपने स्वार्थ के लिए मेरा जो पद है वह कहीं नीचे ना आ जाए, इसके लिए वह तैयारी करता है। और सब कौरवों ने अनुशासन को उल्लंघित कर दिया और उसका किस प्रकार से वध हो गया आपके सामने है। लेकिन ये ध्यान रखो, इसमें एक रहस्य की बात और है। वीर अभिमन्यु ने तो अनुशासन का भंग नहीं किया और कौरवों ने उसको रखा ही नहीं। इसके बीच में एक और रहस्य की बात है जो हमें और अतीत की ओर ले जाता है, जो हमारे चित्त वृत्ति के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा देता है, जो हम चलते हुए भी किस प्रकार प्रमाद कर जाते हैं इस पर वह प्रश्नार्थक चिन्ह और लगा देता है। संदेह पैदा कर देता है कि हम इतने चल तो गए हैं लेकिन ये क्यों हम गिर रहे हैं, इसके बारे में और सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जो प्रमाद के कारण ऐसा हुआ करता है। अनुशासन तो अनुशासन होता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे श्रमण हो, चाहे वो आज का हो या कल का हो, चाहे वो नया हो या पुराना हो, कोई भी हो, अनुशासन तो अनुशासन होता है। गृहस्थ को इस बारे में भी और सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे गृहस्थ है, उनका एक जीवन नहीं रहता किंतु परिवार का जीवन रहता है। परिवार का जीवन नहीं रहता, अड़ोस पड़ोस के भी उसके ऊपर प्रभाव रहता है। इतना ही नहीं, वह संबंध जुड़ता 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 बहुत दूर तक चला जाता है, जो एक समाज के रूप में एकीकरण को लेकर के पैदा हो जाता है। एक कंकर किसी भी तालाब में किसी बीच में थोड़ा सा कंकर गिर जाता है, पूरा तालाब स्पंदित हो जाता है, यह अपने आप ज्ञात हो जाता है। जब उसमें से छोटी भले ही लहर हो, लेकिन वह लहर उठती है और जहां से उठी है वहां से तट तक जाकर के अपनी वार्निंग दे देती है कि हाँ, बीच में कहीं न कहीं कुछ खलबली हो चुकी है। छोटा सा कंकर है और उस तालाब को उसने स्पंदित कर दिया और तालाब में लहर कितनी बड़ी हो गई, दोनों तट तक वह परिधि खिंचती चली गई और एक खसखस के दाने के बराबर भी एक कंकर इतने बड़ा तालाब को भी स्पंदित कर सकता है। इसी प्रकार एक अनुशासन भंग करता तो समाज में उसका रूप भयंकर रूप लेकर करके आ सकता है, उसका परिणाम हम जानते हैं। लेकिन अनुशासनहीनता बड़ी खतरनाक वस्तु, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे पुरानी हो, कोई भी हो, हमारे लिए बाध्य कर देती है। पुराण ग्रंथों को पढ़ने से यही हमें प्रकाश मिलता है। वह रहस्य की क्या बात थी? वह बात थी इसलिए थी, रहस्य की इसलिए बात थी, वीर अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन हैं और मां कौन है? सुभद्रा है। जब चक्रव्यूह रचना की विशेषता बताते हुए पत्नी को अर्जुन जी सुना रहे हैं, यह युद्ध में सबसे अमोघ शस्त्र माना जाता है चक्रव्यूह की रचना, और इस रचना के माध्यम से वह रचनाकार इसका जब प्रयोग करता है किसी का उसके ऊपर कुछ नहीं चलता और उसका पूर्ण चलता है और बाध्य होकर के पूरी सेना को उसको सहन करना पड़ता है। किंतु एक तरीका होता है, इसका एक अनुशासन होता है, इसकी एक आर्ट कला होती है, इसका एक अनुभव होता है और इसमें वह सफलता प्राप्त कर लेता है। जिन्नाचार्यों ने नए को नए चक्र की एक उपमा दी है, और नए चक्र की व्यूह रचना जो वक्ता जानता है वही व्यक्ति निश्चित रूप से अनेकांत का क्या मर्म है, सार है और लक्ष्य है इसको वह हासिल कर सकता है, अन्यथा वह स्वयं ही उस चक्रव्यूह में फंस करके मर जाता है, क्योंकि वह फेल हो जाता है। जो फेल होता है वह निश्चित रूप से दूसरे के लिए भी फेल होने के लिए कारण बन जाता है। वह चक्रव्यूह की रचना सुना रहा है और सुभद्रा सुनती चली जा रही, बार बार में वह पूछ रहा कि इसके उपरांत ऐसा होता, इसके उपरांत ऐसा होता, इसके उपरांत ऐसा होता। आदि तक प्रवेश के बाद सारी सारी सुभद्रा के कानों तक उसने पहुंचा दिया, क्योंकि वो खेल नहीं था, कोई कथा नहीं थी, कोई टाइम पास करने का विषय नहीं था, किंतु वह विषय ये था कि अर्जुन कहता है यदि मैं मान लो आज ही समाप्त होऊंगा तो मेरे शास्त्र वह ज्ञान या वह विद्या, किंतु जो गर्भिणी संतान है उस संतान के ऊपर ये वाणी का असर हो जाए बस एकमात्र अर्जुन का लक्ष्य था। और वह बार बार पूछता था कि क्यों सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, इसको और एक बार समझा दीजिए। ऐसे करते 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 वह चले गए, लेकिन कब नींद लग गई सुभद्रा को पता नहीं लगा और यह अनुशासनहीनता अर्जुन की हो गई, बीच में टोका नहीं। आदि रचना का वर्णन यथावत उसने सुना दिया और यह सारे सारे संस्कार उस जो गर्भस्थ उसी के ऊपर पड़ती चली जा रही है। आप कॉलेज खोलो तो शिक्षण नहीं मिलता, विद्यालय खोलो शिक्षण नहीं मिलता, संस्कार के साथ किए जाते हैं तो मिलता है, नहीं तो वह अर्थकरी विद्या के ही उपासक बन जाता है, अन्य और कुछ नहीं होता। संस्कारों के बारे में भी हम सोचते हैं तो जैनियों के यहां भी संस्कार हैं, तो
वैष्णव में भी संस्कार हैं, तो आर्य समाज में भी संस्कार हैं, तो संस्कार रहित कोई भी समाज नहीं है। घर में आने से पूर्व से संस्कार प्रारंभ हो जाता है, तो देह संस्कार जो अंतिम संस्कार है वहां तक भी उसके लिए संस्कार कहा है। गाड़ना नहीं कहा और जलाना नहीं कहा, ध्यान रखो, जलाने में भी एक संस्कार है, ताकि उसकी यात्रा पूर्ण हो जाए। ये संस्कार अपने आप में उस जीव के ऊपर पड़े हुए रहते हैं, वो कभी भी उसके जीवन में काम आ सकते हैं, उसके परिवार के जीवन में काम आ सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के लिए काम आ सकते हैं, उस राष्ट्र के लिए काम आ सकते हैं, विश्व के लिए काम आ सकते हैं, विश्व तीन लोक में वह तहलका मचा सकते हैं। संस्कार समीचीन रूपेण कृतम, सवा संस्कार समीचीन रूप से ऐसे घुट्टी पिलाए जाते हैं। अभी घुट्टी पीने के योग्य तो नहीं है वो, फिर भी पिलाए जा रहा है। आप तो जन्म के बाद की बात करते हैं, पुराण ग्रंथ जन्म में आने से पूर्व से ही बात करना प्रारंभ करते हैं। आप जन्म लेने के उपरांत भी बच्चे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार के विद्यालय छात्रावास में पढ़ते हैं जहां पर माता पिताओं का समागम भी मुश्किल हो जाता है। संस्कार दूसरा विदेशी देंगे और अदेशी बच्चा तैयार होगा, समझ में नहीं आता हमें। राष्ट्र को संभालने वाला कौन संभालेगा, कौन संभाल सकता है, कौन संस्कार डाल रहा है? कोई भी है नहीं, कोई गुट्टी पिलाने वाला नहीं, संस्कार डालने वाला नहीं। आप सोचते हैं बड़ा होने के उपरांत अपने आप ही आपको समझा देगा, ये ध्यान रखना आपसे वो कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि आप शुरुआत से ही आपने ये पट्टी पढ़ा उसको कुछ समझा ही नहीं। समझाने का अर्थ जन्म लेने के उपरांत की बात नहीं होती है, ये गर्भ से ही हम अपने भावना करते हैं। हमारी संतान इस प्रकार के संस्कार के साथ पले। एक क्षत्रिय था, थी अर्जुन थे, और वो अर्जुन ने अपना कर्तव्य का निभाव करता है चला गया, लेकिन अनुशासन में हीनता आ गई, प्रमाद कर गया, पूछा नहीं दोबारा कि भद्रे सुन रहे क्या नहीं, और वह उसकी आंख लग गई। देखो ध्यान रखना, तुम प्रवचन सुनते सुनते सोना नहीं। राजस्थान वालों से विशेष कहना हमारा, क्योंकि यह सारे सारे राजस्थान में जाकर के भी सुनाना पड़ेगा, मैं राजस्थान से ही आया हूं, ये ध्यान रखना। आप ही नहीं, मैं भी राजस्थान से आया हूं, राजस्थान को जानता हूं। महाराज जी ने मेरे ऊपर संस्कार राजस्थान में ही डाले, वर्षों को गिनने की बात नहीं, ध्यान रखना। और महाराज जी को भी आपने कह दिया, ये ध्यान रखना, इनके साथ जाकर आप बात नहीं कर सकते, और इनको भी ताकि दे देते हैं इनकी बातों में नहीं आ जाना। प्रार्थना प्रार्थना किया करो, आग्रह आग्रह किया करो, सत्याग्रह भी कर सकते, लेकिन सत्यग्राही बना करो, ये ध्यान रखा करो। तो क्या बात कह रहा था, ये बात कह रहा था संस्कार की बात है। वह संस्कार आगे तक तो सुना दिया, आदि तक तो सुन लिया, बाद में आदि जो चक्रव्यूह की रचना का वर्णन था वह बहुत महत्वपूर्ण था। प्रवेश इतना महत्वपूर्ण नहीं कि प्रवेश पाकर के पुनः वह साबुत सुरक्षित बाहर आ जाए तो वह विजयशील हुआ करता है। वीर अभिमन्यु की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। क्या करे, क्षत्रिय पुत्र है, जितना सुना, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हा, उसने कहां सुना, सोचो विचार करो, उसने कहां सुना, पेट में सुना, किसने सुनाया, भावना ने सुनाया। ये भावना थी कि मेरी संतान कि किसी भी प्रकार से क्षत्रियता से वंचित न हो और प्रजा की रक्षा करने में तत्पर रहे, ये क्षत्रिय का एक संकल्प रहता है। यह संकल्प पूर्ण होता है उस क्षत्रिय को बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। दुनिया में कोई संतुष्टि हो या ना हो, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अपनी कर्तव्यता की पूर्णता पर बहुत संतुष्टि होती है। ये तो दुनिया दुरंगी मखारे सराय, कहीं खैर खूबी, कहीं हाय हाय हमेशा बना रहता है। दुनिया प्रशंसा करे तो आत्मनिष्ठ है और कर्तव्यनिष्ठ है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखो। क्षत्रिय लोग कभी ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, कभी किसी को कुछ कहते नहीं, लेकिन एकांत में भी वह अपनी कर्तव्यनिष्ठा से स्खलित नहीं हुआ करते हैं। यह क्षत्रियता का एक प्रतीक होता है। धरती के पालक वह भूपालक माने जाते हैं और यह संस्कृति हमेशा बनी रही है। तभी यह संस्कार आज कुछ चल रहे हैं। यहाँ पर 24 भगवान जो क्षत्रिय हुए थे, उन्होंने इस भक्ति के ऊपर संस्कार डाले हैं। इस आर्यकंड में ऐसे संस्कार डाले हैं उन्होंने अपने पत्नी के द्वारा, विहार करते हुए और चर्चा करते हुए, उपदेश देते हुए, एक एक कण में क्षत्रियता और जनत्व बनने के एक संस्कार उन्होंने डाले है। वे अभी समाप्त नहीं है, ये रहेंगे पंचम काल के अंतिम समय तक। तीर्थंकर भले ही अभी इस काल में नहीं हुई, लेकिन तीर्थंकरों ने ऐसे संस्कार डाले हैं, उनकी यदि कोई जिनवाणी को पढ़ लेते हैं, शास्त्र को हम पढ़ लेते हैं, तो वह वीरत्व अपने आप ही भीतर से बाहर आने को चला जाता है। यह मैं इस खून का, मैं इस शरीर का यदि प्रयोग करूं तो इस प्रकार वीरता पथ पर चल करके मैं करूं, यदि नहीं होता है तो मैं गृहस्थ आश्रम में रह करके प्रजा का पालन करता रहूं और सभी जीव इस अनुशासन के माध्यम से सुख और शांति का अनुभव कर सके। ये हमेशा हमेशा उन लोगों की बात रहती है। अर्जुन ने अनुशासन का भंग कर दिया और उसकी पत्नी ने जो प्रमाद नहीं करना चाहिए था प्रमाद कर गए। जिस प्रकार किसान पृथ्वी में बीज बोता है तो कभी सोता नहीं, पृथ्वी में बीज बोते ही उसका सारा का सारा ध्यान उस खेती की ओर ही रहता है और वह बार बार अपनी दृष्टि निहारता रहता है और दूर दूर तक देखता रहता है कि मेल के ऊपर खड़े होकर के कहां पर कमी है इस खेत में और मुझे क्या करना है, अड़ोस पड़ोस खेत में क्या है लहला रहे, हमारे क्यों नहीं पानी की, खाद की, परिश्रम की आदि आदि सारा सोचता और भगवान से विनती करता रहता। जब वह फसल कट करके धान पूरा का पूरा घर आ जाता है, उस समय वह शांति का एक श्वास, दीर्घ श्वास लेता है कि मैंने अपना जितना कर्तव्य था वह कर लिया, अब प्रजा के लिए जितना बांटना बांट लूंगा। लेकिन यदि सो जाता है तो सारी प्रजा सो जाएगी, क्योंकि गेहूं नहीं आए, बीज नहीं आए, फसल नहीं आए, नहीं परिवार, नहीं गांव, नहीं राष्ट्र, नहीं समाज, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। संस्कार डालते डालते अधूरा संस्कार का यह परिणाम, वह प्रवेश तो पा गया वीर अभिमन्यु, किंतु बाहर निकलने की विद्या उसने नहीं सुनी थी, पढ़ी नहीं थी, नहीं सुनी नहीं थी, वह वचन उसके पास नहीं। इसलिए वचन जो है शब्द ब्रह्म माना जाता है। शब्द इन्हीं ब्रह्म होता है तो निश्चित बात है उसमें कुछ न कुछ ज्ञान की बात होती होगी, उसमें कुछ न कुछ प्रवचन होते होंगे, उसमें कुछ न कुछ हितोपदेश होता होगा। शब्द केवल शब्द नहीं हुआ करते, किंतु शब्द का अर्थ हुआ करता है। जिसको पद बनाया जाता है तो शब्द को अर्थ मिलता है। राम कहने से कुछ नहीं होता, राम कहने से अर्थ निकलता है। यह राम कर्ता के रूप में आया है इस वाक्य में। नित कोश में भी शब्द राम है तो वह कोश कोई साहित्य नहीं हुआ करता है। साहित्य जो बनता है उन कोश के आधार पर पद जब धारण कर लेता है तो साहित्य बन जाता है। तो पद का अर्थ होता है व्याख्याता, शब्दकोश कभी व्याख्याता नहीं होता, किंतु उसमें अर्थ रहता है। उस अर्थ को पद दे करके बनाया जाता है तो परमार्थ की सिद्धि होती है। शब्दों में यदि सिद्धि होती तो किसी को भी सिद्धि होना चाहिए, लेकिन शब्दों के साथ जो भाव दिए जाते हैं वह संस्कार का काम कर जाता है और वह शब्द सुनने के लिए वह वंचित हो गया।
और आप लोग सोचते हैं कि अपने यहाँ राम जैसे बने और लक्ष्मण जैसे बने, कृष्ण जैसे बने और अर्जुन जैसे बने, पांडव जैसे बने, महावीर जैसे बने, अनेक प्रकार के पंच कल्याण करते हैं। पंच कल्याणों को जो करते हैं उस समय आप देखा करो और सोचा करो कि क्या क्या क्रियाएं संस्कार उसमें डाली जाती है। उसमें गर्भ कल्याण से पूर्व में भी कुछ संस्कार रहते हैं, गर्भ कल्याण से प्रारंभ हो जाता है और निर्वाण कल्याण तक पूरा का पूरा यह चित्रण 5 दिन में 5 व्यक्ति मिल करके ये कार्य कर जाते हैं। तो पंच कल्याण हो जाता है और पंचों का कभी भी कल्याण नहीं हो पाता, सारे दुनिया के तो कैसे कल्याण है। जल्दी रहती है, उन्होंने संस्कार की कोई बात सुनता नहीं, कुछ भी नहीं करता। नामकरण संस्कार भी एक होता है। आजकल हमने और सोचना प्रारंभ कर दिया, यह सोचना कर दिया है कि नामकरण जो माता पिताओं के द्वारा किया जाता है अथवा कोई सन्यासी साधु सन्यासी के पास में जाकर के पूछा जाता है, ऐसे भी रिवाज हो सकती है और वह नामकरण इस ढंग से किया जाता है। लेकिन आज अपने नाम को जो ओरिजिनल है उसका प्रयोग नहीं करके अपर नाम एक और आ गया, हुआ अपना नाम मानते हैं। इस अपर नाम के कारण भी संस्कार धूमिल होते चले जा रहे हैं, इससे वह संस्कार एकदम समाप्त हो जाता है। क्योंकि माता पिताओं के द्वारा जो संस्कारित करके नामकरण किया जाता है उस नाम को छोड़ करके हम दूसरा और अपनी तरफ से अपर नाम रख दिए तो ये बहुत गड़बड़। क्योंकि आज तो रोड और